में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। इस तपस्या भट्टी में हम बाबा के बच्चे साकार मात पिता की अखंड तपस्या के वाइब्रेशन भी ग्रहण कर रहे हैं और साथ साथ मम्मा बाबा और हमारी दादियों ने जिन्हें स्नेह शक्ति और पालना देकर योग्य बनाया, ऐसे महारथी बाबा के बच्चों से मिलने का, उनके अनुभवों का लाभ लेने का भी ये गोल्डन चांस है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा जब एक मंच पर इतने महारथी आपको देखने को सुनने को मिले, तो ये भी तपस्या भट्टी की बड़ी अलौकिकता है, विशेषता है। तो तपस्या भट्टी की जो आज का क्लास है विशेष, वो हमारे सन्मुख आदरणीय राजू भाई जी उपस्थित है और आप सभी हाथ हिलाकर भ्राता जी का वेलकम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर जोन के ये भाई बहने हैं, भाई साहब 225 भाई बहने हैं और सभी बाबा के घर तपस्या का सुख ले रहे। आदरणीय राजू भाई जी का परिचय देते हुए ये बात जरूर याद आती है कि हम सब ब्राह्मणों के लिए संगम युग में तीन अमूल्य रत्न है, वो है एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। बाबा की मुरली जो ब्राह्मणों के लिए जीवन रेखा है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो आदरणीय भ्राता जी, विशेष वर्तमान समय मधुबन में सारा मुरली डिपार्टमेंट आपके निर्देशन में चलता है। विशेष साकार मुरलियों में जो वरदान स्लोगन आदि हम सुनते हैं, ये सब संकलित करने का विशेष भाई साहब का ये महान पुरुषार्थ है। हमारी आदरणीय दादियां प्रति मास ब्राह्मण परिवार के लिए बेहद यज्ञ से पत्र पुष्प भेजते हैं, दिल की दुआएं भेजते हैं। उस पत्र पुष्प आदि का लेखन कार्य दादियों के संग ब्राता जी ही करते हैं। यज्ञ के मुख्य मुख्य सर्कुलर, मुख्य मुख्य कार्यक्रम, सभी समाचार चारों तरफ भेजने की भी मुख्य सेवा आदरणीय ब्राता जी के ऑफिस से चलती है। तो आप मधुबन के एक ऐसे विशेष रतन है जो हम यह कहे कि बाप दादा और दादियों के अति समीप, उनके दिल की बात को भी जानने वाले, उनकी बात को, भावनाओं को इशारे में ही कैच कर लेने वाले और फिर वो सब तक पहुंचाने वाले, ऐसे आप विशेष रतन हैं। मधुबन में ही 40 वर्षों से अधिक समय से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष आपने यज्ञ में बड़ी दीदी और प्रकाशमणि दादी जी के समीप रह करके यज्ञ की बहुत तेज प्रोग्रेस होते देखा है। तो ऐसे आदरणीय भ्राता जी आज हमारे सन्मुख है। वैसे तो भ्राता जी को विषय तो यही दिया है कि भाई श्रीमत से ब्राह्मण जीवन सुखमय कैसे बन जाए, तो वो भ्राता जी क्लास कराएंगे, लेकिन इनके अनुभव भी बड़े अद्भुत है, अलौकिक है। वो भी कभी और भी समय मिले तो हम सुनते रहे तो बहुत प्रेरित होने का एक गोल्डन चांस है। ब्राता जी लंबी यात्रा करके कर्नाटक टूर पे थे, कल ही मधुबन आए हैं। जब से बत्ती शुरू हुई, जब से हम इनको देखते थे, भाई साहब कहाँ हैं, भाई साहब कहाँ हैं, तो पता चला भाई साहब तो बहुत दूर है, लेकिन बाबा ने ऐसा सुंदर सुयोग हमें फिर एक बार स्वागत करेंगे भाई हाँ, और आपके अनुभवों का, आपकी शक्तिशाली वाणी का हम सभी लाभ लेंगे आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में, मधुबन की पावन भूमि में, आप सौभाग्यशाली बाबा के बच्चों को तपस्या करने का गोल्डन चांस मिला और बहुत अच्छी तरह से लगन के साथ 3 दिन से आप योग भट्टी कर रहे हैं। मधुबन की ये पावन भूमि बाबा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। हमारी दादियों ने, बाप दादा ने, मीठी माँ ने इस भूमि पर अनेक वर्ष तपस्या की है, इसलिए आने वालों को कोई योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज योग लग जाता है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं सभी, हो रहा है कि नहीं? मेहनत लग रही है, क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत प्यार की शिक्षाएं और पालना दी है। इस जीवन का आधार बाबा की मुरली है और मुरली ही श्रीमत है। अगर कोई ब्राह्मण जीवन में सदा सुखमय स्थिति का, अपनी श्रेष्ठ उन्नति का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका आधार केवल केवल मुरली है। अगर मुरली का गहन अध्ययन कोई करता है, हमारी दादियां कितनी बार मुरली का अध्ययन करती हैं, जब भी दादी के पास हम जाते हैं उनके हाथ में मुरली मिलती है, चाहे वो वरदान पढ़ रही हूँ चाहे पूरी मुरली पढ़ रही हूँ। मैंने दादी प्रकाशमणि जी को भी देखा, अभी दादी जानकी जी इतनी एज में भी मुरली और साहित्य जो भी बाबा का है कोई भी चीज उनसे मिस नहीं होती, सब कुछ पढ़ती है। इतने ईमेल आते हैं, हम कहते दादी आप क्यों इतना सब पढ़ती हो, कहती पढ़ना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, सारा दिन ही उनका पढ़ने में जाता है। और फिर पढ़ करके सिर्फ ऐसे नहीं उसको रख दिया, कोई भी बात आती है तो उसका तुरंत उत्तर जाना चाहिए। ये कभी दादियों की बहुत अच्छी हाबी बनी हुई है, नेचर बना ली है कि कोई भी पत्र आ जाए, कोई भी समाचार आ जाए, कोई भी बात हो तुरंत जवाब देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि उनकी तपस्या, उनकी लगन, उनका पुरुषार्थ, वो जिस प्रकार से कदम कदम पर श्रीमत को फॉलो कर रही हैं, उनकी यही आस है, उम्मीद है कि हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार बाबा की श्रीमत को कदम कदम पर फॉलो करे, हर श्वास संकल्प बोल कर्म जो भी हो वो श्रीमत के अनुकूल ही हो, विपरीत न हो। और हम समझते हैं कि ऐसा कोई ब्राह्मण बाबा का बच्चा नहीं है जिसको श्रीमत के विषय में पता न हो। भले वो पालन नंबर वार कर रहे हैं लेकिन जानते सब हैं। हर एक के लिए एक ही जैसी श्रीमत भी है और कुछ एक के लिए अलग अलग भी हैं, क्योंकि कईयों की परिस्थितियों के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर बाबा को उनके अनुसार कहना पड़ता है कि बच्चे ये कर सकते हो, ये कर लो। लेकिन जो उन परिस्थितियों में बंधे हुए नहीं हैं उनके लिए फिर वो श्रीमत लागू नहीं होती। इस बात को थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस बात को मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, क्योंकि कई बार बाबा की मुरली में एक दिन एक प्रकार की बात आती है और दूसरे दिन दूसरे प्रकार की आ जाती है। एक दिन बाबा कहता है, बच्चे तुम्हें किसी की शादी ब्याह में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारी ड्रेस तो सफेद ड्रेस है, तुम्हें रंगीन ड्रेस नहीं पहननी है। दूसरे दिन की मुरली में कुछ दिन के बाद आ जाता है, बच्चे कोई हर्जा नहीं है, जाना पड़ता है तो शादी ब्याह में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, रंगीन ड्रेस भी पहन सकते हो। तो कई आत्माएं इसमें मूंझ जाती हैं कि एक दिन तो बाबा ने एकदम मना कर दिया था और दूसरे दिन फिर ये मुरली में कैसे चेंज बात आ गई। इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा के सामने जैसे बच्चे जिस प्रकार की शक्ति और हिम्मत को लेकर के आते हैं, बाबा उन्हीं अनुसार उनको श्रीमत देते हैं। जैसे बाबा कहते थे कि अगर कोई कुमार कुमारी मेरे पास आए और बाबा को बोले कि बाबा मैं क्या करूं, मुझे माँ बाप का बहुत बंधन है, मुझे शादी करनी पड़ेगी, तो बाबा उसको ये नहीं कहेगा नहीं करनी चाहिए, जरूर करो, छुट्टी देगा। क्यों देगा, कोई है उत्तर आपके पास है? जी, बाबा के इसमें दो रहस्य हैं। कल्याणकारी बाप है, बाबा उसकी हिम्मत को जानता है, देखता है, क्योंकि बाबा ने तो एक जैसी श्रीमत मुरली में दी है कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम्हें संपूर्ण पावन बनकर मेरे पास जाना है, जो तुमने हिसाब किताब बनाए हैं उनको चुकतू करना है, नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, ये सबको ज्ञान एक जैसा श्रीमत है। लेकिन यदि वो कोई कमजोर आत्मा है जो सामना नहीं कर सकती परिवार का और बाबा से पूछती है, मान लो बाबा उसको श्रीमत में पक्का कर दे कि तुम्हें नहीं करनी है, उसका कल्याण है उसमें, लेकिन वो इतना कमजोर है जो बाबा की उस श्रीमत को अवज्ञा कर सकता है, तो बाबा उसकी हिम्मत को देख करके उसको श्रीमत देता है कि अगर अवज्ञा कर देगा तो इस पर डबल पाप चढ़ जाएगा। एक तो श्रीमत की अवज्ञा हो ही रही थी और दूसरा इसने पूछ करके फिर अगर गलत कर्म कर दिया तो इसको बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा उस समय उसको कहेगा, बच्चे भले कर सकते हो, कर लो, जिसमें कम से कम एक तरफ से तो बच जाए। कल्याणकारी बाप है, इसलिए कभी किसी बच्चे का कल्याण न हो, इस ढंग से उसकी हिम्मत को, उसके निश्चय को, उसकी दृढ़ता को देख करके राय देता, श्रीमत माना राय। राय पर वो कितना उछल सकता है, उस मत पर वो कितना फॉलो कर सकता है, उसके आधार से बाबा की श्रीमत मिलती है। हम बच्चों को सामने लक्ष्य है कि अगर हमें संपूर्ण पावन बनना है, अगर अपने पढ़ाई की संपूर्ण डिग्री हमें लेनी है, क्या है डिग्री हमारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पढ़ाई की डिग्री है। और इस डिग्री को लेने के लिए कोई भी श्रीमत में समझौता है ही नहीं। लेकिन अगर कोई आत्मा इस डिग्री को लेने के लिए इतना हिम्मत नहीं रखती है तो बाबा उसको जबरदस्ती उसके कल्याण के लिए मत नहीं देगा। कल्याणकारी बाप है, बनाना उसको ऐसे है, अगर वो श्रीमत अनुसार चल करके बनेगा तो उसको सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी, बनेगा तो जरूर, नहीं बनेगा तो उसको सजाएं खानी पड़ेगी। ये जो सुखमय स्थिति है ब्राह्मण जीवन की, ये सुखमय स्थिति श्रीमत से कैसे बनी, क्योंकि श्रीमत अगर हम यथार्थ रीति से पालन करते हैं तो कभी भी दुख और अशांति नहीं आ सकता। कभी भी कोई बात में हम निराश उदास नहीं हो सकते, कुछ न कुछ श्रीमत की सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं। अमृत वेले से रात तक हम चेक करें, आंख खुलते बाबा की श्रीमत क्या है, श्रीमत है कि पहले संकल्प में बाबा की याद आनी चाहिए, पहली दृष्टि बाबा की तरफ जानी चाहिए, ये श्रीमत है। और यदि उस आत्मा ने पहले उठते ही कोई स्थूल कारोबार शुरू कर दे, फोन दबाया, किसी से बात करना शुरू कर दे, देहधारी याद आया, तो श्रीमत की अवज्ञा हो गई। किसी भी प्रकार की श्रीमत सूक्ष्म में भी अवज्ञाएं अगर हो रही हैं, मान लो आप कहते हो हम श्रीमत अनुसार अमृत वेला करते हैं, योग में आते हैं, योग करते हैं, लेकिन ये भी श्रीमत साथ साथ है कि योग में बहुत अलर्ट होकर के बैठना है, सुस्ती नहीं फैलानी है। किसी भी प्रकार की अगर सुस्ती का वायुमंडल बनेगा और सामने वाली दूसरी आत्माएं उसको वायुमंडल के कारण सुस्त हो जाएंगी, तो उसका भी बोझ आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इस श्रीमत को समझना है कि हम तो पालन कर रहे थे, लेकिन अगर हम संगठन के बीच में वायुमंडल को भारी कर दिया तो उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है, हमारी अवज्ञा हो सकती है, श्रीमत की अवज्ञा हो सकती है। इसलिए ऐसे कुछ सूक्ष्म रहस्य हैं जिसको बाबा कहता है, चलते चलते ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्म अवज्ञाएं ही दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अगर वो सूक्ष्म रीति से भी हर श्रीमत का पालन करता है, खाते पीते उठते बैठते बात करते व्यवहार में आते, तो ये जीवन इतनी सुखमय है कि इसके अंदर कोई दुख आ ही नहीं सकता है। हम सब कुछ ही पर सुखदाता के बच्चे हैं, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। दुख आया क्यों, दुख का आने का मूल कारण क्या है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना। और मूल श्रीमत जिनके लिए बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन की श्वास है, ब्राह्मण जीवन का आधार है, उस फाउंडेशन में अलबेले न हो। जैसे तीन चार बातें मैं आपको सुनाता हूं जो बाबा की मेन श्रीमत है जिसको हमें फॉलो करना ही है, उसमें अलबेलापन ना आए। पहली श्रीमत बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, एक मुझे याद करो, मनमना भो मामेकम, केवल एक, दूसरा कोई याद ना आए। यदि सूक्ष्म में भी कोई देह का धर्म मुझे भान में रहता है, जाति का रहता है, धर्म का रहता है, कोई पद पोजीशन का रहता है, अगर आत्मिक स्मृति में हम निरंतर नहीं रह पा रहे हैं, माना हम इस श्रीमत की सूक्ष्म अवज्ञा कर रहे हैं। और ऐसी अवज्ञाएं कुछ न कुछ हरेक से होती है, सबसे सभी श्रीमत का पूरा फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब बॉडी कॉन्शियस में बहुत समय रहे हैं और देहमान में रहने के कारण बाबा की श्रीमत ज्यों की त्यों फॉलो करते चले, उसके लिए बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए, बहुत निश्चय चाहिए। ये भगवान कह रहा है, ये भगवान के बोल हैं, ये भगवान की श्रेष्ठ मत हमको हमारे कल्याण के लिए मिल रही है। जब तक संपूर्ण विश्वास नहीं है, जब तक संपूर्ण निश्चय नहीं है, अगर उसने दिन कह दिया तो हाँ जी, अगर रात कह दिया तो हाँ जी, उसके अंदर जरा भी संकल्प न उठे, क्योंकि मम्मा बाबा की जीवनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मम्मा के सामने कोई इतना शब्द भी बोल देता था, आज जो बाबा ने कहा मम्मा ये हो सकता है, तो मम्मा उसके समय उसी समय कह देती थी क्या तुमको संशय है, किसने कहा है, ये पूछने का भी प्रश्न क्यों उठाया तुमने। स्वयं भगवान अगर कह रहा है तो उसने जो कह दिया वो सत्य वचन है, उसमें तुम्हारा संकल्प भी क्यों उठा कि बाबा ने कहा तो है पता नहीं। अगर संकल्प भी उठ गया माना आपका संपूर्ण निश्चय नहीं है, और संपूर्ण निश्चय नहीं है तो श्रीमत पर चलना संभव नहीं है। हमारी मम्मा ने जो बाबा को जिस नजर से देखा है, हम लोगों ने जो इतिहास सुना है पढ़ा है, जिस तरह से हमने अपनी दीदी को देखा है, दादी को देखा है, उन्होंने बाबा की हर बात को सिर माथे रखा, कभी भी प्रश्न नहीं उठाया कि बाबा ने कहा है लेकिन ऐसा शब्द भी नहीं अंडरलाइन किया। बाबा ने कहा बच्चे अभी सेवा पर जाना है, उन्होंने ये नहीं कहा बाबा ट्रेन का टाइम तो हो गया है, अभी मैं पहुंचूंगी कैसे, एक घंटा में ट्रेन तो चली जाएगी। बाबा ने कहा बच्ची जाना है, उन्होंने प्रश्न नहीं किया। हाँ जी, ये भी नहीं कहा ट्रेन का टाइम हो चुका है, उठाया थैला चल दिए। और अगर बाबा ने कहा और उसने मान लिया तो ट्रेन लेट हो जाएगी, उसको मिल जाएगी, ये भी निश्चय है। एक कहानी आपने शायद सुनी होगी, एक पार्टी बाबा से विदाई लेके जा रही थी। इस स्थान पर ही पांडव भवन में ही जब हम लोग आए हैं तब बैलगाड़ी थी और सब सामान बैलगाड़ी से ही इस बरगद के झाड़ के नीचे से बाबा वहां तक विदाई देते थे साकार में, और बैलगाड़ी में सामान जाता था और सब लोग बस अड्डे तक पैदल जाते थे, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती थी। तो एक पार्टी बाबा से विदाई लेने आई तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा मम्मा बाबा का विचार इन बच्चों को हलवा खिलाया जाए। विदाई ले रही है और मम्मा से कह रहा है बाबा इन बच्चों को हलवा खिलाया जाए तब जाए। तो बोला बाबा इनकी बस का टाइम हो गया है, लोगों ने कहा कि, बोला कहीं कोई बात नहीं मम्मा तुम हलवा बना के ले आओ। मम्मा हलवा बनाने के लिए चली गई और उस पार्टी ने बाबा से विदाई ली और विदाई लेकर के बाबा उसको छोड़ करके आए, पार्टी चली गई। मम्मा हलवा बना रही थी, बहने दौड़ के आई बोली मम्मा वो पार्टी तो चली गई जिसको हलवा खिलाना था। बोला बाबा ने ये नहीं कहा, बाबा ने कहा हलवा बना के ले आओ, चली गई वो मुझे नहीं कहा कि चली जाएगी ये होगा, बाबा ने कहा बना के ले आओ, बाबा को खिलाना है। मम्मा ने प्यार से हलवा बनाया, पार्टी चली गई, मम्मा बना करके तैयार करके बाबा के आगे ले आई, बाबा हलवा बन गया। अच्छा बच्ची बन गया, साइकिल वाले को बुलाओ। साइकिल पर एक भाई को बुलाया और कहा जाओ बच्चे तुम पार्टी को हलवा खिला के आओ, जहां भी मिले वहां खिला दो। अब वो पार्टी बस में बैठ चुकी, बस चल चुकी, स्टार्ट हो गई, वो साइकिल वाला दौड़ करके बस के आगे खड़ा होकर के ऐसे हाथ उठा के रुकवा दिया। बस वाले ने समझा शायद इनकी कोई सामान छूट गया होगा, उन्हें रोक दिया प्यार से। वो भाई बस में चढ़ा, पार्टी को हलवा खिलाया और ड्राइवर को भी खिलाया, खुश किया सबको कि बाबा ने खास आपके लिए बनवाया था और भेजा है, आप खा करके फिर जाओ। एक सेकेंड भी मम्मा ने ये संकल्प नहीं किया, पार्टी चली गई, बाबा ने कहा है माना करना है। इसको कहते हैं श्रीमत को जिस तरह से कहा गया, जो कहा गया बाबा के मुख से निकला, हमारी दादियों ने हमारी मामा ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हम लोगों से भी बाबा मम्मा की यही अपेक्षा है, दादियों की यही अपेक्षा है, जो कुछ बाबा ने कहा है उसमें जरा भी मन की मत और पर मत, इन दोनों चीजों को ऐड नहीं होने दो। पर मत बहुत ज्यादा नुकसान करती है, कई बार मन मत भी करती है लेकिन मन मत से भी ज्यादा खतरनाक पर मत है। जिस प्रकार के संग में हम उठते बैठते हैं, अगर हम कोई कमजोर का संग कर रहे हैं, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है उसका संग कर रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है उसके संग में हम बैठ रहे हैं, तो उसके संग का प्रभाव हमारी स्थिति को कमजोर बना देगा। वो हमें भी श्रीमत पर चलने नहीं देगा क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है इतनी। इसलिए बाबा की ये श्रीमत है, बच्चे कोई भी ऐसे कमजोर का संग नहीं करना, संग तारे कुसंग डुबोए। अगर आपको पार जाना है तो जो ऐसे उन्नति वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो सदा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखती हैं, जिनके अंदर सदा पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह है, हिम्मत है, ऐसे ही आत्माओं के संग में उठना और बैठना। कोई भी परचिंतन करने वाला हो, परदर्शन करने वाला हो, अपनी मत का प्रभाव डालने वाला हो, उसको परख करके उस संग से अपने आप को बचा करके रखना। नहीं तो परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर मुझे अपनी स्व उन्नति करनी है तो परचिंतन करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, कोई भी ऐसा हो। बाबा ने इसलिए कहा है बच्चे आंख नाक कान बंद कर लो, तुम्हारे लिए श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल और डू नो इविल, ये श्रीमत दी है बाबा ने। अगर कोई भी व्यर्थ बातें हैं, सबसे ज्यादा व्यर्थ तो ये है, इसको बाबा और अंडरलाइन करता है, देह के विषय में अधिक चिंतन करना, देहधारियों के विषय में अधिक चिंतन करना, उनके बारे में बोलचाल में आना, सुनना, बोलना, देखना, ये सब व्यर्थ है, इविल है। इस इविल से अपने आप को बचाओ। अगर सुखमय स्थिति सचमुच बनाने चाहते हैं तो हमें कोई भी ऐसी व्यर्थ बातें देखनी, सुननी, बोलनी, सोचनी नहीं। थोड़ा वातावरण का असर तो पड़ना चाहिए ना। बेंगलोर में ठंडा था एकदम, बहुत ठंडा था, और यहाँ एकदम शांति उनमें गर्म था। वहाँ रोज बरसात पड़ रही थी, पंखे भी नहीं चलते हैं, और यहाँ पर एकदम गर्मी एसी, तो थोड़ा खांसी का असर हो गया। तो ध्यान रखना, बाबा की पहली मत, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो। दूसरी मत, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन के लिए मन, वचन, कर्म, मनसा, वाचा, कर्मणा अपनी स्थिति को निर्विकारी बनाओ, पवित्र और योगी बन करके रहो। कोई भी अपवित्रता का अंश अब समय प्रमाण संकल्प में भी ना आए। वो साकार की मुरलियों में कभी कभी आता है, बच्चे संकल्प में कोई विकर्म नहीं होते, लेकिन अब समय संपन्नता की ओर जा रहा है, इसलिए संकल्प पर भी ध्यान दो। इस समय की मुरलियां कह रही हैं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अगर हमारा इतना ध्यान है तो हम संकल्प की क्वालिटी पर ध्यान दें, किस प्रकार के संकल्प सारा दिन हमारे चलते हैं। अगर संकल्प बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छे से अच्छे हैं, भले कोई बात हमें सुनाता है, दिखाई भी देती है, उस पर हमारा चिंतन नहीं जाता, ठीक है। ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा जो कुछ कर रही है अपने समझ से बिल्कुल ठीक कर रही है। मुझे अपने संकल्पों को उसके पीछे व्यर्थ नहीं करना, जो करेगा वो पाएगा, बाबा ने सब ज्ञान मुझे दिया है, समझ दे दी है। इसलिए अधिक संकल्पों में अपने आप को लेकर के उसका चिंतन करना, उसका वर्णन करना, उसी में रमण करना, ये बाबा कहता बच्चे वेस्ट जा रहा है, ये भी अपवित्रता, ये भी आपके ऊपर वेट चढ़ रहा है। इसलिए इस वेट से अपने आप को बचाओ, व्यर्थ देखना नहीं, व्यर्थ सुनना नहीं, व्यर्थ सोचना नहीं, व्यर्थ बोलना नहीं, करने की बात तो अलग ही है। बोल के लिए, संकल्प के लिए, दृष्टि के लिए, वृत्ति के लिए, स्मृति के लिए, कृति के लिए, संबंध के लिए, सेवा के लिए, एक एक बात को थोड़ा सा एक देखो, ध्यान दो, इसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके आपको पूरा आईना बाबा की मुरली से मिल जाएगा। बाबा ने हमें संकल्प के लिए श्रीमत दी, बच्चे इस संकल्प को बड़ा अच्छा और पॉजिटिव बनाओ। ये संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको मारो मत, इसको सुधार लो, मन को मारो मत, सुधारो, और अच्छे अच्छे संकल्प करने की आदत डालो, क्योंकि संकल्प ही आत्मा का भोजन है। यदि आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो अपने संकल्पों की क्वालिटी पर ध्यान दो। आत्माएं जो कमजोर हैं, शक्तिहीन है, उसका कारण है वो जो देखती है उस पर सोचने शुरू कर देती, उसी प्रकार का चिंतन हो गया, उसी प्रकार का भोजन अंदर जा रहा है, दृष्टि से देख लिया, संकल्प चला लिए, और वो संकल्प उस आत्मा की शक्तियों को चीर्ण कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि संकल्प के लिए श्रीमत है, बच्चे वही संकल्प करो जो तुम्हारे कल्याण के लिए है, अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए, और कोई संकल्प नहीं रचो। अच्छे संकल्प में अगर रमण करना आ गया, उसके लिए भी परहेज बहुत है। ध्यान देना, संकल्पों की रचना के जो आजकल आधार हैं, क्यों संकल्प ज्यादा चल रहे हैं लोगों की, बहुत टेंशन पैदा हो रहा है, उसका कारण है वो सारा दिन क्या देख रहे हैं, टीवी ऑन कर दी, इधर की न्यूज, उधर की न्यूज, ये समाचार, वो सीरियल, ये देखते रहेंगे सारा टाइम, और वो जो देखते हैं उसकी छाप अंदर अंदर पड़ती जाती है, और संकल्पों की क्वालिटी दूषित होती जाती है। इसलिए इस परहेज पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को ध्यान देना चाहिए। जो मेरे काम का है उतना देखो सुनो, बाबा बंधन नहीं डालता, लेकिन ऐसे समाचार, ऐसे सीरियल, ऐसी बातें सुन करके अपने मन को प्रदूषित मत करो, ये श्रीमत है। और इस श्रीमत का अगर कोई अवज्ञा कर रहा है, सूक्ष्म भी अवज्ञा कर रहा है, बाबा उसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी खुशी गायब होगी, वो सुखमय जीवन का अनुभव नहीं कर सकता, वो शांतमय जीवन का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके संकल्प ऐसे हैं जो सारा दिन उसका वही चिंतन, वही मनन, वही वर्णन हो रहा है। इसलिए श्रीमत माना, बाबा ने जो कहा है हमारे कल्याण के लिए उसको बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना, उसमें कोई भी प्रकार की अवज्ञा न हो। बोल के लिए श्रीमत है, बच्चे वही बोलो जो दूसरों का भला वाला हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मान वाला बोलो। अब कोई छोटी सी बात हो गई, आपने चिल्ला के बोल दिया, उसे संबंध बिगड़ जाएंगे। आपस में आज इतना स्नेह है, इतना प्यार है, इतनी सेवाएं हो रही हैं, उसका आधार है हमारे आपस के संगठन में मधुर बोल। अगर मधुर बोल कड़वे बन गए, किसी को कटाक्ष कर दिया, किसी को ऐसा बोल दिया, मुख से तीर निकाल दिए, तो क्या होगा? वो आत्मा घायल हो जाएगी। घायल करने का संस्कार, तीर नहीं चला रहे हैं लेकिन वाणी के तीर किसी को अगर घायल कर देते हैं, उसकी खुशी, उसका उमंग, उसकी हिम्मत, वो अपने आप को अपमानित अगर महसूस करती है हमारे बोल से, तो उसकी दुआएं नहीं मिलती, उसकी बददुआएं मिल जाती हैं। और जिस आत्मा को अगर किसी की भी सूक्ष्म बददुआ मिल गई, उसकी स्थिति क्या होगी, विचार कर सकते हो। इसलिए ब्राह्मण जीवन में, चाहे वो निमित्त आत्माएं हैं, चाहे टीचर्स के समर्पित जीवन में हैं, चाहे आप हम सब प्रवृत्ति वाली आत्माएं हैं, प्रवृत्ति वाली आत्माओं को भी इस बात का अंडरलाइन करना, घर के माहौल को, संबंधों को ठीक रखने के लिए, समरस रखने के लिए हम सबको अपने बोल पर बहुत कंट्रोल रखना है। हम हमेशा कहते हैं ये जवान हमारे तो का बहुत उन्नति भी करती है और पतन भी करती है। जबान के द्वारा अगर बहुत आकर्षण है, खाने पीने का जीभ चलायमान है, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और जबान अगर बार बार बोलने में रस ले रही है, अधिक बोलती है, तो भी संबंध बिगड़ जाते हैं। संबंध और स्वास्थ्य दोनों के लिए हर एक को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है। श्रीमत ये कहती है, बच्चे जो बहुत शरीर को जरूरी है वो खिलाओ। आसक्तियों के बस कोई चीज खा लिया, कोई बहुत तला गला मिर्च मसाले वाला खा दिया, आप उत्तेजित होते रहेंगे, आपकी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। इसलिए श्रीमत कहती है सादा जीवन उच्च विचार, खान पान भी बहुत सादा, सात्विक, योगयुक्त, शाकाहारी होना चाहिए। अगर वो भी हमारा बहुत फास्ट है, बहुत आजकल के मिर्च मसालों वाला है, तो भी आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और आपकी इंद्रियों की भी शीतलता समाप्त होती जाएगी। इसलिए हर योगी आत्मा को इस जबान के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। संगठन के बीच में रहते हर एक ध्यान रखे वही बोलूं जितना जरूरी है, ऐसे बोल मुख से न निकल जाएं जो कहते निकल गया अब क्या करूं, निकल गए अब क्या करूं, माना उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। और अगर निकल गए और पश्चाताप करें तो ज्ञानी कैसा? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है ना। ज्ञानी माना सोच समझ कर, एक स्लोगन आता है ट्रक के पीछे, कई बार हम लोग पढ़ते हैं, सोचने के पहले सोचो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सोचने के पहले सोचो, बोलने के पहले सोचो, करने के पहले सोचो मेरे साथ क्या जाएगा। अगर कोई ऐसे ही बोल दे और बाद में कहे मैं चाहती तो नहीं था, मेरे से निकल गया, मुझे माफ कर दो, ज्ञानी कहेंगे इसको? उस जैसा ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञानी आत्मा कभी भी ये नहीं कह सकती मैं चाहती नहीं थी, मेरे मुख से निकल गया। मैंने सोच लिया, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया। बाबा हमेशा ज्ञानी और अज्ञानी का यही कॉन्ट्रास्ट सुनाते हैं। ज्ञानी आत्माएं सोच समझ करके बोलती हैं, करती हैं, और अज्ञानी आत्माएं करने के बाद सोचना शुरू करती हैं, उनको पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए बहुत श्रीमत के अनुकूल अगर हम चल रहे हैं तो पश्चाताप करना ही नहीं पड़ेगा, दुख आएगा ही नहीं, अशांति आएगी ही नहीं। इसलिए श्रीमत है, बोल को बहुत मधुर बनाओ, कम से कम बोलो, सम्मानजनक बोलो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, नहीं तो चुप रहो। कहा जाता है एक चुप सौ भला, सौ काम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा चुप भी नहीं ले लेना जो कोई का संकल्प ही चलते नहीं, पता नहीं क्यों शांत हो गया, ये तो बोलता ही नहीं है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, ऐसा चुप रहना भी ठीक नहीं है। स्मृति के लिए बाबा की एक बहुत सुंदर श्रीमत है, क्योंकि स्मृति में कई पास्ट की बातें उसको डिस्टर्ब करती रहती है। और बाबा हम सबको कहता है, बच्चे तुम मुझे जिस दिन से पहचाना उस दिन से तुम अपनी जीवन कहानी, अपनी कर्म कहानी, जो कुछ तुम्हारे से हुआ वो लिख करके दे दो, मुझे सुना दो, और फिर उस पर पास्ट पर नजर नहीं डालो। बीतती सो बीत गई, उसको फुल स्टॉप लगाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ना ये दुख का कारण बनता है। कोई भी बीत गई बात, माना मुर्दा गड़ गया, चला गया जमीन के अंदर, उसको उखाड़ के देखना नहीं है। इसलिए बीतती बातों का चिंतन न हो, फुल स्टॉप। और भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान पर हमारा यदि पूरा ध्यान है, वर्तमान अगर हम श्रीमत को पूर्ण रूप से यथार्थ रूप से पालन कर रहे हैं, तो भविष्य हमारा अच्छे से अच्छा निश्चित ही है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान पर फुल अटेंशन, तो बीती का चिंतन नहीं और कल की चिंता नहीं। वर्तमान में जीना अगर हम सीख गए तो कल अच्छा होगा ही। इसलिए स्मृति के लिए बाबा की श्रीमत है, स्मृति में सदा एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा को बिठा करके रखो, हर बात में बाबा 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 याद आए, बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या कहा, बाबा भी इसके लिए क्या चाहता है। जो कर्म करने जाओ, जो बोल बोलने जाओ, हमेशा बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे सामने साकार में ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल होकर रहे हैं। भले आपने साकार नहीं देखा, साकार की मुरलियां आप सुन रहे हो, उस समय बाबा के अनुभव, जितना जो कुछ बाबा ने किया है अव्यक्त रूप में, बाबा ने क्या क्या किया है वो सबको सुना दिया। आप अगर ध्यान से सुनेंगे, मैं हर जनवरी मास में बाबा के कदम लिखता हूं, चाहे 10 कदम चाहे 18 कदम आते हैं आपके पास, आप देखेंगे अव्यक्त बाबा ने सुनाए हैं, ब्रह्मा बाबा ने ये कदम उठाया, ब्रह्मा बाबा ने ये कदम उठाया। और हम बच्चों के लिए श्रीमत है, तुम सिर्फ कदम पर कदम रखो, तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। बाबा ने जो किया वही मुझे करना है। एक हमारे सामने सुंदर कसौटी है, और बाबा की कसौटी अगर जिसके साथ में है उस कस के देख लो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, संबंध में ऐसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बाबा ने क्या प्रैक्टिकल नहीं किया। बाबा को बाल बच्चे सब थे, परिवार था, समाज था, इतना बड़ा बिजनेस था, सब कुछ करके कैसे बाबा एकदम फरिश्ता बना, कैसे अव्यक्त निराकारी बाप समान बन गया, हम सबके सामने एग्जाम्पल है। और बाबा ने किया है और प्रैक्टिकल हमको दिखाया, बच्चे ये करो ये करो ये करो, हमारी दादियां उनको इसी तरह से फॉलो भी कर रही है। हम सिर्फ इनको साकार रूप में देखते हैं और उनके कदम पर कदम रख करके चल रहे हैं, और कुछ नहीं, नया रास्ता ले रहे हैं। तो स्मृति में एक बाबा याद आए, साकार में बाबा ने क्या किया, निराकार बाबा की श्रीमत और साकार बाबा की श्रीमत, दो श्रीमत शास्त्रों में भी गाई हुई है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आया, शायद नहीं मानेगा, वो भी मत मानी गई है श्रीमत, ब्रह्मा की भी मत गाई हुई है, तो शिव बाबा की तो श्रेष्ठ मत ही, वो तो ही श्रेष्ठ है श्रेष्ठ, सबका कल्याणकारी। तो उस बाप की स्मृति रहे कि इन दोनों बाप दादा ने क्या किया, तो वही करना है बस। दृष्टि के लिए तो स्मृति रोज मिलती है श्रीमत, बच्चे इस दृष्टि को इतना सिविलाइज्ड बनाओ, इतना स्वच्छ बनाओ, जो या तो हर आत्मा की विशेषता दिखाई दे, नहीं तो आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि दिखाई दे। आत्मा को देखने का अभ्यास करो, इस सांप को मत देखो, शरीर सांप के रूप में है, ये डस सकता है, इसलिए आत्मा मणि है और उसकी प्योरिटी, उसकी चमक, भ्रकुटी आसन पर आत्मा को देखो और उसकी विशेषताओं को फॉलो करो। दृष्टि के लिए श्रीमत है, कर्म के लिए श्रीमत है, सुख देना है, सुख लेना है। कभी भी कोई दुख दे भी तो आपको लेना नहीं है, इसलिए बाबा ने हम सबको श्रीमत दी, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। इस सब श्रीमत को एक बार अंडरलाइन करके आप चलेंगे तो इस श्रीमत के आधार से बहुत श्रेष्ठ और सुखमय जीवन बन जाएगी। लेकिन अमृत वेले से रात तक व्यवहार के लिए श्रीमत क्या है, भोजन के लिए श्रीमत क्या है, बिजनेस के लिए श्रीमत क्या है, अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो मैं समझता हूं आपको हर बात के लिए बाबा की श्रीमत मुरली के अंदर मिल जाएगी। बच्चों को संभालने के लिए भी श्रीमत दी है, व्यवहार में आने के लिए भी श्रीमत है, शादी ब्याह में जाना पड़ता उसके लिए भी श्रीमत है, हर बात के लिए श्रीमत मिली हुई है। और श्रीमत को अंडरलाइन करके अपनी धारणाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए रोज अपने आप से कुछ वायदे अवश्य करने चाहिए। कहते हैं जितने वायदे उतने फायदे, वायदा कायदा और फायदा। जो बाबा ने हमारे लिए कायदे बना करके दिए हैं उन कायदों पर चलने के लिए बहुत दृढ़ता के साथ वायदा करो और उन वायदों को निभाओ तो आपका जीवन बहुत फायदे में रहेगा। किन वायदों को हम अंडरलाइन करें, अभी मैं 5-7 आपको वायदे बताता हूं। किया तो हमने सबने वायदे हैं बाबा के सामने, बाबा कराता है जबरदस्ती भी कराती, वायदा करो, और हम सबने किए हैं। मुरली के अंदर आते हैं हम हाथ उठा देते हैं, शिवरात्रि पर भी लिख देते हैं हाथ उठा देते हैं, राखी पर भी वायदे करते हैं, जब कोई त्योहार आते हैं बहने कहती है लिख के दो ये वायदा करो, लिख देते हैं, लेकिन वो याद रहते हैं। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि वायदों की फाइल मेरे पास बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बच्चों ने वायदे कह लिए लेकिन फॉलो कम करते हैं। तो आज जो वायदा करेंगे फॉलो करेंगे सभी है? करेंगे वायदा? अगर सचमुच सुखमय जीवन का अनुभव करना है तो 7 वायदे मैं बताता हूं, श्रीमत के ही है। पहला वायदा है, कोई भी छोटी मोटी बात देखो सुनो उसको बड़ा नहीं बनाना। बड़ा कैसे बनती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कब किया, ये क्वेश्चन लगा दो। कोई लेख लिखना हो ना, विचार सागर मंथन करना हो, कोई एक टॉपिक लेकर के ये 5 प्रश्न लगा दो, अपने आप वो टॉपिक बन जाएगी। ऐसे ही व्यर्थ बातें जो है कुछ नहीं, ब्राह्मण परिवार में है छोटी सी बात, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, किसने देखा, लगा दी क्यों व्यर्थ की, वो टॉपिक बन गई। इसलिए अगर अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा बनाना है तो हर बड़ी बात को भी छोटा बना दो, बड़े से बड़ी बात पहाड़ जैसी भी दिखाई दे कुछ नहीं है, मैं उड़ती कला में चला जाऊं, मैं ऊंची स्थिति पर चला जाऊं, वो बातें कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी खिलौने जैसी हैं, खेल है। बाबा जिसका इतना सर्वशक्तिमान साथी है उसके लिए पहाड़ भी क्या है, बाबा कहता राई भी नहीं करो, राई तो भारी होती रुई है। कोई हमारे ब्राह्मण जीवन में बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन हम उसको सोच सोच करके, इधर उधर सुना करके, वर्णन करके अपने आप को छोटा महसूस करते, मेरे आगे ये पेपर आ गया, मेरे आगे ये परिस्थिति, बाबा कहता नथिंग न्यू बच्चे, कुछ बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी जो पदवी है ना इतनी ऊंची है, ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए, ऊंची डिग्री प्राप्त करने के लिए पेपर भी बड़े बड़े आते हैं, तुम पेपर देख करके डर गए तो तुमको पद कैसे मिलेगा, इसलिए पेपर से घबराना नहीं, उनका चिंतन वर्णन नहीं करो। बातें हरेक के सामने आती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके आगे ना आती हो, अगर उसको श्रेष्ठ पद की चिंता है, उसको प्राप्त करना है, तो बातें आएंगी, बड़े से बड़ी बातें आए, फुल स्टॉप, नथिंग नो, कोई बड़ी बात नहीं, हमारा साथी सर्वशक्तिमान है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये वायदा ये है कि मुझे हर बात को छोटा बनाना है, छोटी छोटी बातों को सोच करके वर्णन करके बड़ा नहीं करना है। दूसरी बात, मूडी कभी नहीं बनना। मूडी समझते, मूड मति, जिसको बाबा कहता मूड मति, मूड बदलते रहते घड़ी घड़ी, अभी देखो हर्षित मूड है, अभी देखो उदास है, अभी देखो एकदम प्रफुल्लित है, एकदम निराश। ऐसे मूडी उनसे बात करने में भी डर लगता है, पता नहीं इसका मूड क्या होगा, आज मैं इसके पास जाऊंगी बात करूंगी इसका मूड क्या होगा। हमारे मूड को देख करके कोई के संकल्प चल जाए, पता नहीं आज इसका बड़ा सीरियस मूड था, आज पता नहीं क्रोधी मूड था, बाबा कहेगा अरे बच्चे मूड मति मत बनो, मूडी मत बनो, अपनी एक रस मूड रखो, जो हो रहा ठीक है, अच्छा होगा, कल्याण ही इसमें समाया हुआ है। मूड मति बन करके मूड चेंज करना, तो उसको बाबा एक बार कभी कभी साकार मुरलियों में बड़ा नाम देता है, याद है क्या देता है, सिंधी में बोलता है, सांडा बोलता है उसको, ये जो छिपकली जैसा एक होता है ना, जिसको हम गिरगिट कहते हैं हिंदी में, उसको सांडा कहते हैं, वो सांड नहीं सांडा। अगर उस सांडे की तरफ, उस गिरगिट की तरफ आप ऐसे भी पत्थर फेंकोगे ना, ऐसे कंकड़ फेंकोगे, तो भागेगा नहीं कंकड़ से, डरेगा नहीं, क्या करेगा, ऐसे गर्दन करे ऐसे, और ऐसे करके लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, कलर बदलेगा, डरता नहीं है, बहुत डरवाता है। और तो बाबा कहता है वो गिरगिट वाला रूप नहीं बनाओ, मूडी मत बनो, कोई कुछ भी कह रहा है आप अपनी मुस्कुराती हुई मूड से, हर्षित मूड से, एक रस स्थिति से ठीक ठीक जवाब दे दो, आपसे कोई डरे नहीं, घबराए नहीं, आपसे संकोच मत करे, बहुत सरल चित्र।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर।
तो मूडी कभी नहीं बनना, मूड चेंज नहीं करो, एक रस मूड रहो रखो। जगदीश भाई ने किताब एक बार लिखी थी 36 मूड की, बहुत वैरायटी मूड सारे दिन में बनते हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको श्रीमत दी है, बच्चे सदा खुशनुमा एक रस प्रसन्न चित मूड होनी चाहिए। तीसरी बात, फीलिंग का फ्लू बहुत जल्दी आ जाता है, ये बुखार बहुत तेज है, थोड़ी सी बात मेरे मन पसंद नहीं हुई, फीलिंग आ गई, कोई ने मुझसे बात नहीं की, कोई ने मुझसे पूछा नहीं, कोई ने मुझसे ठीक व्यवहार नहीं किया, फट से फीलिंग आ जाएगी। और ये फील करना एक फ्लू की बीमारी है ब्राह्मण जीवन में, बुखार आता है बार बार तो कहते कुछ अंदर इसके गड़बड़ है, इसलिए ध्यान रखना वो टाइफाइड का रूप न बन जाए, बहुत समय चलता है ना तो टाइफाइड हो जाता है, आई बात खत्म हो जाए, उसको ज्यादा इधर उधर सोच करके बड़ा नहीं करो, इसलिए फीलिंग में नहीं आना, ये फ्लू है। और उसका मूल कारण, उसके लिए बहुत दृढ़ता का संकल्प करो, अहम और बहम, ये ब्राह्मण जीवन में कैंसर की बीमारी है, बड़ी खतरनाक, कोई बचता नहीं इससे, अगर हो गया तो लास्ट स्टेज पर तो पता चलता है इसको वहम हो गया है, अपने में वहम है, बहनों में वहम है, निमित्त आत्माओं में वहम है, कईयों को तो बाबा में भी वहम हो जाता है, पता नहीं बाबा आता है या दादी बोलती है या क्या होता है, क्या ऐसे वहम, और वहमी जो होते हैं ना वो, उनकी इलाज कोई के पास नहीं होता। कहते हैं अनुमान की जो बीमारी है ना, उसकी दवाई लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी, बड़े से बड़ा हकीम था। तो कभी भी कोई भी बात बहम के रूप में नहीं लेना, विश्वास पात्र बनो, सबके प्रति विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा, जो करेगा अपना करेगा, मुझे किसी प्रति, अपने प्रति भी नहीं, अपने परिवार में भी नहीं, पति पत्नी के बीच में भी नहीं। अगर वो बहम आ गया ना तो कभी भी शांति का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा, वही संकल्प आपको बार बार परेशान करेंगे। और अहम तो मैं अंदर सूक्ष्म में होता है, अगर जरा भी कोई ने अपमान कर दिया, कुछ भी कह दिया, उसकी बात को कट कर दिया, उसकी बात को सुना नहीं, फट से अपमान फीलिंग होगा, ये मेरा अपमान हो गया, मैं भी देख लूंगा। अगर अहम होता है ना तो अभिमान वाले को जरा भी अपमान सहन नहीं होता, दूसरों का अपमान फट से कर लेगा, खुद का अपमान वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए वायदा ये है बाबा के साथ, बाबा मैं अहम और बहम से बच के रहूंगा, करण करावन हार आप हो, जो करा लो मेरे द्वारा, निमित्त हूं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनकर रहूं मैं आपका। मैं क्यों कहें अहम करूं, मैंने किया, मैं नहीं करता, कोई नहीं करता, मैं तन से करता हूं, मन से करता हूं, धन से करता हूं, मैं इतना यज्ञ में किया है कोई को पता ही नहीं है, ये सब क्या है, ये अहम है, मैंपन है। इसलिए ये सूक्ष्म अहम और बहम, इन दोनों बीमारियों से बच के रहूंगा, इस पर फुल नजर रखोगे तब इससे मुक्त हो सको। बार बार चेकिंग करो, और नहीं कर पाते हो तो करा लो डॉक्टर से, हैं डॉक्टर, लेकिन इस बीमारी से बच के रहना। सदा अपने सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना है। बाबा ने हम सबको ये मंत्र पक्का कराया है, बच्चे मान मांगो मत, मांगने से नहीं मिलता, तुम अपने सम्मान में रहो। बाबा ने बहुत महिमा की हमारी, बहुत प्रशंसा की है, बहुत टाइटल्स दिए हैं, उनको रिवाइज करो, अपने सम्मान में रहो। कभी भी मान की इच्छा के पीछे नहीं प्राप्त हुआ तो दिल शिकस्त और निराश नहीं होना, ये हार्ट की बीमारी है। जो बार बार छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाता, निराश हो जाता, माना उसको सम्मान की कमी है, उसका जो उमंग उत्साह का ब्लड है वो ब्लॉक हो गया है, अटैक आ जाएगा उसको। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में रोज नशा चढ़ाओ, डोज दो अपने आप को, वाह रे मैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिसको डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन मिला हुआ है, जिसको डायरेक्ट सकास मिल रही है, पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, उस जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इसलिए कभी भी कोई से मान मांगना नहीं, और नहीं देता है तो उदास और निराश मत होना, दिल शिकस्त कभी नहीं होना, अपने ऊंचे सम्मान में रहो, और जो आपके सामने आते हैं दिल से उनको सम्मान दो। क्यों? हर आत्मा बहुत विशेष आत्मा है, भगवान का चुना हुआ रतन है, उसकी नजर इसके ऊपर पड़ी है, कैसा भी है, उसके संस्कार हैं, स्वभाव हैं, कोई भी आदतें हैं। बाबा ने कहा है बच्चे तुम उसके लिए आंख बंद करो, तुमको देखने की जरूरत नहीं है, सबको सुधारने का ठेका मैंने लिया है, मैं अपने आप ठीक करूंगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम उसकी विशेषताओं को देखो, जो उसमें विशेषता है एक तो होगी, उसको देख करके अपने आप को खुश रखो, जो है बहुत अच्छा है, जैसी मिली वैसी बहुत अच्छी, उसका कोई भी चिंतन करके सम्मान देने से हटना नहीं, सम्मान दो, आप दोगे आपको अपने आप देगा, मांगने की जरूरत नहीं। कितनी बातें हुई? चार ही हुई, पांच हो गई। कितनी नोट किया? रिपीट करता हूँ, कितनी हुई? नहीं नहीं सम्मान सम्मान, अहम वहम, फ्लू और मूड, और पहली बात बताई थी छोटी बात को बड़ा नहीं करना, पांच बताई है। छठी बताता हूँ, बाबा ने हम सबको एक के बंधन में बांधा है, एक शब्द के। एक तरफ हम सबको एकाग्रता और एकांत का बड़ा अच्छा अनुभव करना है, मैं सदा एकांतवासी अंतर्मुखी बनकर रहूं, अपनी उन्नति के लिए हरेक को एकांत निकालनी है। एकांत माना जंगल में नहीं जाना, लेकिन एकांत माना मुझे एक के अंत में रहना है, बस एक की याद में खो जाना है। एकाग्रता और एकांत जितनी जिसको पसंद है उतनी उसकी उन्नति हो सकती है। सबके बीच में, संगठन के बीच में रहते भी मन बुद्धि से एकाग्रता का अभ्यास करो, एकांतवासी बन करके रहो, कोई भी बाहरी हलचल आपके मन को डिस्टर्ब न करे। एक ब्रत्ता, एक बाबा, दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। अगर सच्चे दिल से कोई संकल्प ले ले कि वृत्ति में भी मैं किसी देहधारी आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होंगी, एक वृत्ता माना केवल एक बाबा दूसरा न कोई, किसी से भी दिल का लगाव झुकाव आकर्षण न हो, तो एक वृत्ता का महामंत्र जो है वो आपको बहुत ऊंची स्थिति पर ले जाएगा। ऐसी सूक्ष्म श्रीमत वायदे के रूप में अगर हम पालन करते कि हम एक वृत्ता होकर के रहेंगे, एकांतवासी होकर रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे, एक बल एक भरोसे के आधार पर चलेंगे, सम्मान देंगे, सम्मान में रहेंगे, तो ये बाबा की मूल श्रीमत है। ये श्रीमत अगर हम अंडरलाइन करके चलते हैं अपने लिए समझते, ये नहीं सबके लिए, इसको कहा है बाबा ने, इसको कहा है, कई बार मुरली जब चलती है ना तो खुद के लिए ध्यान नहीं जाता है, ये बात फलाने के लिए बड़ी अच्छी है, उसके लिए होनी चाहिए, उसको चलो ये पॉइंट भेज देते हैं, लेकिन नहीं, ये बाबा ने मुझे कहा है, मुझे करना है, मुझे ऐसा बन करके दिखाना है, और ये लक्ष्य रखेंगे कि मैं करूंगा तो मुझे देख सब अपने आप करेंगे। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कोई आपको चाहेगा पिला करके तो चढ़ेगा नहीं, इसलिए रोज घोटो, अपने आप को पढ़ा पिलाओ और मस्त रहो। बाबा आपने जो मुझसे आशाएं रखी हैं, जो आपकी चाहनाएं हैं, जो आपकी शिक्षाएं हैं, जो आपकी श्रीमत है, वो मेरे सिर माथे पर है, मैं आपकी एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। आप देखेंगे ये जीवन इतनी सुखमय है, आपके पास दुख की लहर आ ही नहीं सकती। दुख का आवाहन कई बार हम लोग खुद अपने कर्मों से कर लेते हैं, इसलिए दुख को इस समय संगम पर बाबा कहता तुम दुख धाम को छोड़ चले, दुख धाम की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखो, तुम्हारे लिए तो सुख धाम आया कि आया। ठीक है, तो ऐसी सुख स्वरूप स्थिति बनाकर श्रीमत का पालन करते हुए इस ब्राह्मण जीवन को बड़ा सहज, बहुत निर्विघ्न जीवन बनाना है। ओम शांति।
शांति। सभी बाबा से किए हुए वायदे याद करते करते ही बाबा को गुड नाइट करेंगे। हाँ, और ब्राता जी को सब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, बहुत बहुत दुआएं हैं। वायदे याद करते रहिएगा। ओम शांति।